Okay, it's me again.
ठीक है, वापस एक बार मैं.
I hope you've all had a chance to get bored.
तो मुझे आशा है कि आपको बोर होने का पूरा पूरा मौका मिला.
To work with the experience.
और अपने अनुभव के साथ कार्य करने का.
So I'm going to go a little bit further with the topic that we've been pursuing.
तो जिस विषय पे हम बातचीत कर रहे थे उसमें मैं अभी और थोड़ा आगे जाना चाहूंगा.
We've been, of course, looking at excellence.
तो हम उत्कृष्टता की बात कर रहे थे.
Excellence for us as Buddhists symbolized by the Buddha.
तो बौद्ध धर्म जिसके की बुद्ध प्रतीक है उसमें उत्कृष्टता.
And we've been seeing that excellence arises in dependence on conditions.
और हमने ये भी देखा कि उत्कृष्टता जो है परिस्थितियों पर आधारित निर्माण होती है.
Everything arises on dependence on conditions and excellence too.
और सभी चीजें जो है परिस्थितियों पर आधारित निर्माण होती है और ऐसे ही उत्कृष्टता भी है.
And we need to study the conditions that produce excellence.
और कौन सी परिस्थितियां उत्कृष्टता निर्माण करती है उनका हमें अभ्यास करना है.
So we've distinguished these five different niyamas.
तो हमने इन पांच अलग-अलग नियमों को देखा.
The uttu, which is physics, chemistry.
तो उत्तु नियम देखा जो भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है.
Bija, which is biology, botany.
Bija जो है जीव शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है.
And mano niyama, which is the psychology of instinct and perception.
और मनोनियम देखा जो कि अंत प्रेरणाओं का शास्त्र है.
And then, of course, the two that really matter to us in developing excellence, karma niyama and dhamma niyama.
और उत्कृष्टता निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण जो है कर्म नियम और धर्म नियम.
And we've seen that dhamma niyama works by bringing results in terms of our own minds.
और धर्म नियम जो है कि हमें परिणाम लाना है अपने मन के ऊपर कार्य करके.
Our own minds are affected by our actions.
तो हमारे मन जो हम कृति करते हैं उसका हमारे मन पे परिणाम होता है.
And we saw that the first thing we need to do is to take responsibility for our minds.
और सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है कि हमारे मन की हमें जिम्मेदारी उठानी होती है.
To be mindful of what's going on within us.
और हमारे अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जागृति बरकरार रखनी होती है.
That's where it starts.
और वहां से इसकी शुरुआत होती है.
And we've been trying to do that especially through practicing anapanasati.
और अनापानसति का अभ्यास करते हुए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं.
But also through doing various physical disciplines that promote mindfulness of the body.
लेकिन बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों के ऊपर भी ध्यान देके हम इस जागृति का सराव कर रहे हैं.
So what else do we need to do?
इसके अलावा हमें क्या करने की जरूरत है?
Let's assume that we're able to be reasonably aware of what's going on within us.
तो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि सही मायने में हमारे अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हम जागरूक हैं.
Well, the next thing we need to do is to discriminate what is skillful from what is unskillful.
और फिर उसके बाद कुशल और अकुशल इनमें क्या भेद है इन्हें हमें अलग करना है.
This is known in Buddhist tradition as dhamma vichaya.
और इसको बौद्ध परंपरा में धम्म विचय कहते हैं.
Discrimination of mental states.
कि अपनी मानसिक अवस्थाओं का वर्गीकरण करना.
So you need to be able to see that what the ethical quality of your mental states is.
तो आपको ये देखना है कि नैतिकता के इस पे आपकी मानसिक अवस्था किस तरह की है.
As they arise.
तो जैसे आपकी मानसिक अवस्था निर्माण होती है.
Of course, that's very difficult.
तो ये बहुत कठिन है.
When you lose it, as we say, you've lost it.
तो जब आप कुछ खो देते हैं इसका मतलब खो देते हैं.
I don't know whether you have that expression. No. To lose it. Well, in English, you lose it when you just lose control of your temper, lose control of your emotions.
तो जैसे इंग्लिश में या हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने अपना आपा खो दिया.
And yes, you need to be aware of it as quickly as you can.
और जितने जल्दी आपको इसकी जागृति आ जाए उतना अच्छा है.
And well, to begin with, you're only aware after.
लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है कि ऐसा हो जाने के बाद आपको ध्यान आता है.
Gradually you begin to be able to be aware of the reactions as they arise.
लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो अपने अंदर निर्माण होता है उसी समय हम उस प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक हो जाते हैं.
And then you make an effort.
और उसके बाद आप प्रयत्न करना शुरू करते हैं.
You make an effort in terms of four different ways of working.
और फिर चार अलग-अलग तरीकों से आप प्रयत्न करते हैं.
You work to get rid of unskillful mental states you've already developed.
तो आपके अंदर पहले से ही जो अकुशल मानसिक अवस्था निर्माण हो गई है उसे दूर करने का आप प्रयत्न करते हैं.
If you're in an angry mood, you work to get out of it.
अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आप कार्य करते हैं.
And if you're in a mood of craving, then you work to get out of it.
अगर आपके अंदर तृष्णा जागृत हो गई है तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं.
You work to prevent unskillful mental states arising.
और अकुशल मानसिक अवस्था निर्माण ही न हो इसलिए आप प्रयत्नशील रहते हैं.
You see the patterns as they begin to unfold.
तो आप एक प्रकार से इस रचना को देख पाते हैं कि किस तरीके से निर्मित होता है.
And you work to get free from them.
और इससे मुक्ति पाने के लिए आप कार्य करते हैं.
You work to stop them happening.
और ऐसा हो ही नहीं इसके लिए आप प्रयत्नरत रहते हैं.
Often it's a question of seeing the danger signals.
तो हमेशा जो है खतरे के पहले कुछ निशानी आ जाती है उसको भापना होता है.
There are situations where you know you're likely to react.
तो ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें आपको पता होता है कि यहाँ आप कुछ तो प्रतिक्रिया देने वाले हैं.
And especially those situations involve particular people.
और जब किसी खास लोगों के साथ आपका संपर्क आता है ऐसी स्थिति में.
There are some people as soon as you see them you start to react.
और कुछ लोग जैसे ही आप उनको देखते हैं आपकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है.
So you train yourself to notice what's happening.
तो हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि क्या चल रहा है उसे हम देख पाए.
It's very very important for this with this to be aware of what's going on in your body.
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूक रहना.
Emotions are felt in the body.
तो क्योंकि भावनाएं जो है वो शरीर के अंदर महसूस होती है.
You know, if you become angry, your heart rate increases, your blood temperature, I mean your temperature goes up.
क्योंकि अगर आप गुस्से में हो तो आपका दिल जोर जोर से धड़कता है आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है.
You can feel muscles tightening.
आप देखते हो कि आपकी मांसपेशियां जो है वो बहुत सख्त हो गई हैं.
So you can feel the mental states in your body.
तो ये जो मानसिक अवस्थाएं हैं इसको हम शरीर में महसूस कर पाते हैं.
This is why we put such an emphasis on mindfulness of the body.
और इसीलिए शरीर के प्रति जागृति के ऊपर हम इतना जोर देते हैं.
So yes, you work to get rid of unskillful states.
तो जो भी अकुशल मानसिक अवस्थाएं उससे दूर निकलने के लिए हम कार्य करते हैं.
You work to prevent unskillful states arising.
और अकुशल मानसिक अवस्थाएं निर्माण ही न हो इसलिए हम कार्य करते हैं.
And you work to develop skillful states.
और कुशल मानसिक अवस्थाएं निर्माण करने के लिए हम कार्य करते हैं.
And if skillful states have already arisen, you work to keep them.
और अगर पहले से ही आप कुशल मानसिक अवस्थाओं में हो तो वो वैसी ही बनी रहे इसलिए आप कार्य करते हैं.
Well, you had experience of that this afternoon, I think. You did the mindfulness, the Maitri Vikas, yeah.
तो दोपहर में आपने मैत्री विकास का सराव किया था और उसमें शायद आपने इस बात का अनुभव किया होगा.
You're deliberately trying to cultivate those skillful mental states.
और आप जानबूझकर कुशल मानसिक अवस्थाएं निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे.
But this is in essence what working with karma means.
और इसी को सारांश रूप में हम कर्म के साथ कार्य करना कह सकते हैं.
Trying to get rid of negative states, trying to foster skillful states.
अकुशल मानसिक अवस्थाओं से बाहर निकलना और कुशल मानसिक अवस्थाओं का निर्माण करना.
So you're all looking slightly I don't know how to get you more alert.
तो आप कुछ बुझे लगते हैं और आपको ज्यादा उत्साही किस तरह से करना है मुझे नहीं पता.
You're looking quite serious. I don't know whether you've had too much talking maybe.
तो आप बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं शायद आपने बहुत ज्यादा बातचीत कर ली है.
I can't think of any jokes to tell you, but
और मुझे भी कोई जोक याद नहीं आ रहे आपको बताने के लिए.
Have you had too much talking? Is that
तो बहुत ज्यादा बातचीत कर ली क्या आपने?
Or you are so concentrated on what I'm saying that it's.
या बहुत ही एकाग्र होकर आप सुबुद्धि क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं.
Yeah. Yeah. It's okay. TK. Okay. Yeah. There we are. You see, I need some feedback, otherwise. Yeah. Sometimes I'm worried that just talking too much, and in a way, what can you do with it?
तो कभी-कभी मैं चिंतित हो जाता हूँ कि बहुत बात हो रही है और क्या चल रहा है पता नहीं. They cannot say wah wah.
Yes. Okay. Well, I'm reassured. I don't know whether I should be, but.
तो अभी मुझे मेरी चिंता दूर हो गई है. मैं निश्चिंत हूँ.
I suppose you're all calming down. You're all settling down. Yes.
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब शांत हो रहे हो और यहाँ पे स्थिर हो रहे हो.
Yes. So we're looking at the way in which you work to develop karma.
तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से आप कार्य करते हो अपने कर्मों को निर्माण करने.
सती और स्मृति.
तो पहली बात है सती या स्मृति.
That's just being aware of what's going on.
तो इसका मतलब होता है क्या चल रहा है इसके बारे में केवल जागरूक रहना.
धम्मविचाया.
और दूसरा धम्मविचय.
Seeing what the states are and seeing whether they're skillful or unskillful.
तो ये देखना कि कैसी अवस्था में हम हैं और ये कुशल है या अकुशल है.
And then working to develop the skillful and get rid of the unskillful.
और फिर कुशल का निर्माण करने के लिए प्रयासरत रहना और अकुशल को दूर निकालने के लिए.
वीर्य.
और वीर्य.
Very very significant in karma.
तो कर्म में इसका बहुत महत्व है.
You need to make an effort to produce skillful karma.
तो कुशल कर्म निर्माण करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है.
As long as you're making an effort, you'll make some progress.
और जब तक आप प्रयास करते रहते तब तक आपकी प्रगति होती रहती है.
That's why the Buddha's last words were appamadena sampadetha, which means with mindfulness strive.
और इसीलिए बुद्ध के आखिरी वर्ड थे शब्द थे अपमादेन संपादित. इसका मतलब है कि प्रयास करते रहो.
It's an effort. The effort to be skillful is a constant one.
और ये प्रयास ऐसे होते हैं कि कुशलता का इसमें निरंतर निर्माण होते रहता है.
So, well, in a way, that's it in a nutshell.
और ये.
That's it in brief.
तो ये छोटे से स्वरूप में था अभी.
All I should do now is say go away and do it.
अभी मैं को इतना ही कहना है कि जाओ और इस पे आचरण करो कार्य करो.
But needless to say, I've got more words I can use.
लेकिन मेरे पास और शब्द हैं जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ.
So, we've got various guidelines for how to develop skillful karma.
तो बहुत सारे मार्गदर्शक तत्व हमारे पास है कि जो बताते हैं कि कुशल कर्म किस तरीके से निर्माण करने.
And one of the most important of those is the list of precepts.
और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पंचशीलों की हमारे पास सूची है.
So you'll know from this morning and last night, and we'll do it again shortly, we recite 5 precepts.
तो कल रात को किया था आज सवेरे किया था तो आपको मालूम होगा. और आज शाम वापस हम कहने वाले हैं हम पंचशीलों का उच्चारण करने.
And these five precepts describe what somebody who's acting skillfully doesn't do.
तो ये पंचशील में ये बताया है कि जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है वो कौन सी चीजें नहीं करता.
They describe what you hold yourself back from.
और ये बताता है कि कौन सी चीजें हैं जिससे आपको अपने आप को दूर रखना है.
And they're really all to do with non-harm.
और इन सभी का संबंध है कि किसी को भी आप किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाते.
अविहिंसा.
और इसको अहिंसा भी कहते हैं.
Not harming other living beings, not harming yourself.
तो खुद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना और दूसरे सजीवों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना.
That's the essence of skillful action.
और उसका ये सार है कुशल कर्मों का.
But first of all, it's put in terms of not doing harm.
लेकिन इसको पहले कि मैं नहीं करूंगा इस नकारात्मक तरीके से रखा जाता है.
I believe that the motto of Google is like that.
तो गूगल का भी जो मोटो है उनका वाक्य वो भी इसी तरह का है.
Apparently the company headquarters they have a big sign up saying don't do evil.
तो उनके कंपनी में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा है कि कुछ भी जो है हिंसात्मक या बुरा पाप कर्म ऐसा मत करो.
Well, as long as they keep to that, that's a good thing.
तो जब तक वो उसके ऊपर आचरण करेंगे वो अच्छी बात है.
Quite a lot of people are a bit suspicious of Google, but that's another question.
तो बहुत से लोगों को गूगल के ऊपर कुछ शंका है, लेकिन वो अलग बात है.
Yeah, but in a way, that's the essence of skillful action is not, or sorry, of not doing unskillful action is not causing harm.
तो कोई भी अकुशल कर्म न करना इसका सार यही है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी.
So the first precept is panatipata veeramani sikkhapadam samadhiyami.
तो पहला शील जो है panatipata veeramani sikkhapadam samadhiyami.
Veeramani sikkhapadam samadhiyami means I undertake the sikkhapada, the training principle of refraining from.
तो वैरमणि सिक्खापदम समाधियम का अर्थ ऐसा है कि मैं ये प्रशिक्षण ग्रहण करता हूँ कि मैं इस चीज से दूर रहूंगा.
I will not do this as a matter of training.
तो मेरे इस प्रशिक्षण में ये बताया गया है कि मैं ये नहीं करूंगा.
The Buddha can't harm others.
तो बुद्ध जो है किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते.
He just has no will to do so.
और उनके पास ऐसा उद्देश्य ही नहीं है कि तकलीफ पहुंचे.
But we want to try to develop the attitude and the responses of the Buddha.
और बुद्ध का जो एटीट्यूड है या जो बुद्ध जिस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं वो हम अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं.
So we deliberately try to cultivate the behavior that he naturally manifests.
और बुद्ध का जो एकदम स्वाभाविक बर्ताव था वही बर्ताव हम अपने अंदर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं.
And that's what these precepts are to do with.
और इन्हीं सब चीजों के बारे में ये पंचशील हैं.
So yes, the first one is panatipata veeramani sikkhapadam samadhiyami.
तो पहला जो है panatipata veeramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata means breathing beings.
तो panatipata मतलब सांस लेने वाले सजीव.
Beings who breathe in and out, literally.
तो ऐसे जीव जो अंदर और बाहर श्वसन करते हैं.
So beings like us.
तो हमारे जैसे जीव.
We undertake the principle of refraining from harming them.
तो हम इस तत्व को ग्रहण करते हैं कि ऐसे सजीवों को हम हिंसा नहीं पहुंचाएंगे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे.
There's a big debate amongst many Buddhists about whether that means vegetarianism or not.
और एक बहुत इस पे वाद विवाद होता है बौद्धों में कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें शाकाहारी बनना है या नहीं.
In our order, in our community, we understand it in that way.
और हमारा जो संघ है, हमारी जो कम्युनिटी में, उसमें हम इसको इसी तरह से समझते हैं.
We think it's quite difficult to feel sympathy with other living beings if you're eating them.
तो हमारा ये मानना है कि अगर आप दूसरे सजीवों को खा रहे हो तो उससे आप सहानुभूति कैसे रख सकते हैं?
I live on a farm or in the midst of a farm in Wales.
तो मैं वेल्स में खेतों में या खेतों के बीच में रहता हूँ.
And all around me 800 sheep.
और मेरे इर्द गिर्द लगभग 8000 भेड़ रहती हैं.
And they're being reared simply for meat.
और उन्हें सिर्फ इसीलिए पाला जाता है ताकि उनको पका के खाया जाए.
And well, I find it quite painful even to see a lovely little lamb being born.
तो मुझे देख के बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा भेड़ का बच्चा पैदा हो रहा है.
You see it leaping about, skipping about.
और फिर वो ऐसे उछल कूद करते रहता है.
So well, full of the joys of spring.
और बहुत उसमें आनंद होता है.
And then, well, just 6 months later, off they go to the market.
और 6 महीने के बाद उन्हें बाजार भेज दिया जाता है.
And I don't think I could eat a sheep.
और मुझे नहीं लगता है कि मैं वो भेड़ खा सकता हूँ.
Even if you know it was given to me on a plate.
और मुझे भले ही वो ऐसे थाली में सजा के दिया जाए.
Because you can, you feel some sympathy for this creature.
क्योंकि आपको उस जीव के प्रति एक प्रकार से सहानुभूति होती है.
Which feels pain, which feels suffering.
और वो दुख का अनुभव करते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं.
Yes, you don't want to harm it. It's like you.
और वो बिल्कुल आप ही की तरह होते हैं तो आप उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते.
So if you want to develop greater sensitivity, if you want to develop greater sense of interaction with the world around you, well, you can't harm things.
तो इस प्रकार से अगर आप एक प्रकार संवेदनशीलता का निर्माण करना चाहते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों से आप एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आप उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते.
So you deliberately cultivate a skillful state of mind by following those precept, that precept.
तो इन शीलों का आचरण करके आप जानबूझकर कुशल मनोस्था का निर्माण करते हैं.
It's not just a question of not doing something.
तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है.
You need to do something positive as well.
तो उसके बजाय आपको कुछ तो भी सकारात्मक भी करना होता है.
So the positive equivalent of non-harm is maitri.
तो अगर आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते तो उसका ही सकारात्मक दूसरा पहलू है कि आप मैत्री कर सकते हैं.
It's not just a question of holding yourself back, but of doing something positive.
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप को पीछे बांध के रखना है लेकिन आगे आप कुछ सकारात्मक लेकर जा रहे हैं.
So we have the positive version of the precept.
तो इसीलिए इस शील का हमारे पास सकारात्मक भाग है.
मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ.
तो मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ.
That's a very good translation. Yes. And it's interesting that the language there, isn't it? Purify your mind.
तो ये बहुत आवश्यकता होती है कि ऐसे वाचा का होना जो आपके मन को शुद्ध करता है.
You're purifying your mind of unskillful states.
तो अकुशल मनोस्था से आप अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं.
So the second precept is adinadana veeramani sikkhapadam samadhiyami.
तो दूसरा जो शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि.
So you're not taking what is not given.
तो जो चीज आपको दी नहीं जा रही है उसे आप नहीं लेते.
This is a little bit more subtle than merely not stealing.
तो चोरी नहीं करना इससे ये थोड़ा सा अधिक सूक्ष्म है.
You don't take something if it is not freely offered.
तो अगर कोई अपनी इच्छा से आपको कुछ नहीं दे रहा है तो आप नहीं लेते.
You can sometimes get away with the legality of it, although what you've really done is steal.
तो अगर आप मतलब कायदे कानून की भाषा छोड़ दे तो जो चीज आपको नहीं दी जाती वो अगर आप ले रहे हैं तो आप चोरी कर रहे हैं.
There's quite a lot one could say about that, particularly in relation to corruption.
तो भ्रष्टाचार के बारे में हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात कर सकते हैं.
But perhaps it's obvious.
लेकिन आप सब इसके बारे में जानते हैं.
The positive counterpart of adinadana is मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ. No translation is necessary.
तो ये इसका सकारात्मक भाग था.
Freely giving.
तो मुक्त हस्त से देना.
So you're cultivating the skillful states of generosity.
तो दान की जो है कुशल मनोवस्था आप जानबूझकर निर्माण कर रहे हैं.
Then thirdly, kamesu michachara veeramani sikkhapadam samadhiyami.
और तीसरा शील है kamesu michachara veeramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu michachara it literally translates as something like misuse of the senses.
तो kamesu michachara का अर्थ होता है कि आपके जो इंद्रिय है इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.
But it's interpreted especially in terms of sexual misconduct.
लेकिन इसको खास करके लैंगिक दुराचार के संदर्भ में देखा जाता
है. And the essence of this is not using any force or violence.
और इसका सारांश यह है कि किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करनी है.
Not disturbing social arrangements.
और जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं उसे धक्का नहीं पहुंचाना है.
You can create a lot of harm even if both partners are willing.
और अगर दोनों भी जो साथी हैं उनकी इच्छा हो तो भी उसमें से आप बहुत सारी मतलब बुरी चीजें निर्माण कर सकते हैं.
And thirdly, not over attaching to it.
और बहुत ज्यादा उसके साथ चिपके नहीं रहना है, आसक्त नहीं रहना है.
So yes, it's usually interpreted in those terms.
तो इस तरीके से इसे देखा जाता है.
That the positive counterpart is.
और इसका सकारात्मक भाग ये है.
Something
संतुष्टि.
Shanti, santushti,
और सादगी का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ।
धन्यवाद। It's contentment.
तो ये शांति है।
Not always craving something that you haven't got.
और जो चीज हमें नहीं मिली है उसके लिए हम हमेशा तृष्णारत नहीं रहते।
Being contented with the state that you're in.
तो हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम संतुष्ट रहते हैं।
If you're married, being contented with that.
तो अगर आपकी शादी हो गई है तो उसमें आप संतुष्ट रहते
हैं। I know that's sometimes quite a job.
तो कभी कभी ये करना बहुत मुश्किल होता है।
If you're not married, well, being contented with that until it ends, yeah.
तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप वैसी परिस्थिति में संतुष्ट रहिए जब तक वो स्थिति खत्म नहीं होती।
Not always thinking the grass is greener on the other side of the fence.
और लेकिन हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि उस बाजू में ज्यादा हरियाली है।
I know I have many young friends who really what you know, they really want to get married. They're just desperate to get married.
तो मैं बहुत सारे अपने ऐसे युवा मित्रों को जानता हूँ कि जो बहुत अधीर है कि उन्हें अभी शादी करनी है।
Six months after marriage, they're desperate to be single again.
और शादी के 6 महीने होते ही उन्हें लगता है अभी मैंने वापस अकेला होना चाहिए।
Well, whichever it is, it's going to be not entirely satisfactory.
तो स्थिति चाहे कुछ भी हो, पूर्ण समाधान आपको नहीं मिल सकता।
So yes, you have to exercise contentment.
तो इसीलिए आपको संतुष्टि का सराव या अभ्यास करना चाहिए।
And contentment is a very important quality to develop in general, not just in that sphere.
और ऐसे भी सामान्य तौर पे संतुष्टि ये बहुत ही अच्छा गुणधर्म है जिसको हम विकसित कर सकते हैं।
Being able to be relatively contented, relatively happy, regardless of your circumstances.
तो भले किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा आप एक प्रकार से संतुष्ट रहते हैं।
I've got from my friend here a magazine that he's published.
तो यहाँ मेरे एक मित्र है और उन्होंने मुझे एक पत्रिका दी जो उन्होंने ये की है छपवाई है।
It had a letter from Dr. Ambedkar to a friend, Yadav.
तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मित्र यादव को लिखा हुआ एक पत्र उसमें है।
And in it he was talking about being very ill. It was 1953.
और उस पत्र में वो कहते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में कहते हैं 1953 का वो पत्र है।
And well, suffering a lot from illness.
और अपनी बीमारी से वो काफी दुखी अवस्था में थे।
And he said that even though he was suffering a lot, he wasn't complaining.
तो भले ही उन्हें मतलब शारीरिक बहुत दुख हो रहा था, पर वो उस बारे में मतलब तकरार नहीं करते थे।
He'd learnt very
शिकायत नहीं करते थे।
He'd learnt very early in his life from his father to not complain, to be contented.
और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता से सीखा था कि शिकायतें नहीं करनी है और एक प्रकार से संतुष्ट रहना है।
And he said usually people are looking for well, what he in rather old-fashioned English talks of as carnal pleasures.
तो वो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमेशा जो है छोटे-छोटे जो है खुशियों के लिए भागते रहते
हैं। You know, carnal pleasures means pleasures of the flesh. Pleasures of the world, pleasures of the body.
तो भौतिक जो शारीरिक जो सुख है इंद्रियों के द्वारा जो हमें मिलता है उसके लिए वो कोशिश करते रहते हैं।
They build their happiness on that sort of pleasure.
और ऐसे ही सुख के ऊपर वो अपने सुख को देखते हैं।
But he'd learned to experience spiritual happiness, spiritual joy.
लेकिन उन्होंने एक प्रकार के आध्यात्मिक सुख की अनुभूति लेना सीखा था।
So even though he's experiencing a lot of pain with his body, he was mentally contented and even happy.
तो भले ही शरीर में शारीरिक स्तर पे वो बहुत दुख का अनुभव कर रहे थे, मन में वो बहुत संतुष्ट थे।
It made a big impression on me reading that.
और जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा।
And that's what this precept means.
और यही इस शील का अर्थ है।
It means not constantly looking for satisfaction through the senses.
तो इसका मतलब ये है कि अपने इंद्रियों के द्वारा सतत सुख पाने की कोशिश नहीं करते
रहे। That doesn't mean you can't enjoy the senses.
तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने इंद्रियों का आप आनंद नहीं ले सकते।
If pleasure comes, well, you enjoy it.
तो अगर आनंद आता है तो वो आप ले सकते हैं।
Somebody gave me some beautiful laddus. Well, I'm going to enjoy them.
तो अगर कोई मुझे अच्छा लड्डू देता है तो मैं उसका आनंद लेने वाला हूँ।
But if I start building my happiness on laddus, It's not going to be a very healthy life.
तो लेकिन मैं अपना सुख सारा अगर लड्डू के ऊपर ही आधारित रखूंगा तो मैं एक अच्छा शारीरिक स्थिति नहीं पा सकता.
If there's a laddu, ठीक है.
तो अगर लड्डू है तो ठीक है.
No laddus, ठीक है.
और नहीं है तो भी ठीक है.
That's the essence of contentment.
तो इसी को संतुष्टि कहते हैं.
So this is what this precept means, that you're able to be happy, you're able to be contented. Whatever the circumstances.
तो यही ये शील है कि भले कोई भी परिस्थिति हो आप अपने आप को संतुष्ट रख पाते हो.
And you can train yourself in this way.
और इस तरीके से आप खुद को प्रशिक्षित कर सकते हो.
By reminding yourself that you cannot find true happiness simply through physical pleasure.
आप अपने आप को याद दिला सकते हो कि सिर्फ शारीरिक सुख के द्वारा ही आप सच्चा सुख नहीं पा सकते.
Again, I just want to stress, in Buddhism there's not a negative attitude to physical pleasure.
तो मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि शारीरिक सुख के प्रति बौद्धों में कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है.
None of you were brought up in the religion that I was brought up in.
तो मेरा जिस धर्म में पालन पोषण हुआ है उस धर्म में आपका नहीं हुआ है.
But that religion has quite a negative view of the body and of the pleasures of the body.
तो उस धर्म में शरीर और शरीर के सुखों के प्रति बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण है.
But in Buddhism there's nothing of that kind.
लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है.
You just take them for what they are.
आपको जो चीज जैसी मिलती है उसे आपको वैसी लेना है.
And you realize that they cannot give you complete happiness.
और आप फिर इस बात को एहसास करते हो कि इससे आपको पूरा सुख नहीं मिल सकता.
A laddu just gives you a little bit of sweetness.
तो लड्डू जो है वो आपको थोड़ी सी मिठास दे सकता है.
Actually, these ones is not just that. They're quite subtle.
तो ये जो है इतना ही नहीं है, बहुत ही इससे ज्यादा सूक्ष्म है.
I better be careful what I say because the person who made them is here, so.
तो मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो लड्डू बनाने वाले इधर ही हैं.
But you know you can enjoy them and then it's gone.
तो आप उसका आनंद ले सकते हो और फिर वो आनंद चला जाता है.
If you just eat another one immediately, well that's addiction, you could say, huh?
और तुरंत अगर आप दूसरा लड्डू खाते हो तो एक प्रकार से आप उसके अधीन हो जाते हो.
But you just enjoy it, you take pleasure in the experience.
तो आप उसका आनंद लेते हो और अपने अनुभव को महसूस करते हो.
And then you let it go.
और फिर आप उसको जाने देते हो.
And that is what contentment is.
और इसी को हम संतुष्टि कहते हैं.
Then the fourth precept is Musavada Veeramani Sikkhapadam Samadhiyami.
और चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि.
That means taking the training principle of refraining from telling an untruth.
तो इसका अर्थ ये होता है कि मैं कोई भी असत्य वाचा का प्रयोग नहीं करूंगा, ये प्रशिक्षण ग्रहण करना.
Obviously when you lie you lead yourself into all sorts of difficulties.
और स्वाभाविक है कि जब आप झूठ बोलते हो तो आप अपने आप को बहुत मुश्किल परिस्थितियों में डाल देते हो.
You do it for various reasons.
आप अलग अलग कारणों से झूठ बोलते हो.
To get what you want, to avoid something.
आपको जो चाहिए वो पाने के लिए या किसी चीज को टालने के लिए.
And you create a sort of a discord in your own mind.
और अपने ही मन में एक प्रकार की फिर आप उलझन पैदा करते हो.
It can be quite difficult to carry a lie, can't it?
और किसी भी झूठ को बहुत लंबे समय तक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है.
You can't remember what you said.
क्योंकि आपने क्या बोला है ये आपको याद नहीं रहता.
And you have to keep remembering that you're not being completely straight with people.
और आपको ये भी याद रखना पड़ता है कि आप लोगों को एकदम ही बहुत ही ज्यादा स्पष्ट नहीं बात कर रहे.
So you cultivate truthfulness.
और इसलिए आपको जो है सच्ची वाणी को निर्माण करना पड़ता है.
Saying what you really know, what you really see, what you really understand.
तो जो आप देखते हो, जो आप समझते हो, उसी को आपको बयान करना है.
What you've really done.
आपने सच में क्या किया है?
It's a very important principle, of course, for sangha.
और संघ के लिए ये बहुत ही महत्व का एक तत्व है.
If we're to help each other practice the spiritual path, we need to be truthful with each other.
तो आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें एक दूसरे को मदद करनी है तो हमें ये तत्व आचरण में लाना पड़ेगा.
And when you are truthful, it can be a very great relief.
और जब आप इस तरह से सच्चे रहते हो तो ये आपके लिए भी बहुत एक समाधान होता है.
And it's not just a question of truthfulness in a literal sense.
तो आमतौर पे जैसे हम बोलते हैं सच्चाई, वैसा इसका अर्थ नहीं है.
But being deeply truthful.
लेकिन बहुत गहराई तक सच्चाई होना.
Being truthful to what you really feel, what you really believe.
तो आप सही में कैसा महसूस करते हो, किन चीजों के ऊपर आपका विश्वास है, उसके बारे में सच्चाई होना.
If you can live with truth, it's a wonderful experience.
तो अगर आप सच के साथ जी पाते हो तो ये बहुत ही अद्भुत ऐसा अनुभव है.
I was reminded of this because recently a very significant political figure in Europe of the 20th century died.
तो मुझे ये चीज इसलिए याद आई क्योंकि हाल ही में 20वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति जो है यूरोप के, उनकी मृत्यु हुई.
His name was Václav Havel. He was from the Czech Republic.
तो चेक रिपब्लिक के वक्लाव हावेल जो है वो, ये उनका नाम था.
He was a playwright and a poet.
तो वो नाटककार थे और वो कवि भी थे.
But he wrote a very important article when the communists were still in power.
तो लेकिन समाजवादी जब ताकत में थे उस वक्त उन्होंने बहुत ही अच्छा एक लेख लिखा था.
He said that a revolution should be launched against the communists.
तो उन्होंने कहा था कि समाजवादियों के विरोध में एक क्रांति होनी चाहिए.
And he said that revolution, the weapon of that revolution was simply the truth.
और उस क्रांति का जो हथियार होगा वो सिर्फ सच होगा.
That sort of fascist government, that sort of totalitarian government rather, it creates an illusion of what is real.
तो इस प्रकार की ये जो समाजवादी संरचना होती है, ये एक सच का सिर्फ आभास निर्माण करती है.
You know, it'll have a placard up saying, "The people support the glorious Communist Party."
तो उनके पास एक तख्ता होगा जो बोलेगा कि सब लोग जो है इस ग्लोरियस कम्युनिस्ट पार्टी को योगदान देंगे.
But it's not true.
लेकिन ये सही नहीं है.
And everybody knows it's not true.
और सब जानते हैं कि सब उसके पक्ष में नहीं होते.
They've become a gang of thieves.
और फिर वो एक चोरों का समूह बन जाते.
And everybody knows they're a gang of thieves.
और सबको मालूम होता है कि एक चोरों का झुंड है.
Even they know they're a gang of thieves.
और उन्हें खुद भी मालूम होता है कि वो चोर हैं.
But nobody dares speak the truth.
लेकिन कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता.
So he said that the strongest weapon we've got is simply to say, no, the people don't support the Communist Party.
तो वो ये कहते हैं कि सबसे ताकतवर जो हमारे पास हथियार है वो सिर्फ इतना कहना है कि नहीं, लोग इस पार्टी के पक्ष में नहीं हैं.
And to say that no, the communist state is not creating a workers' paradise.
और ये कहना कि नहीं, ये जो समाजवादी पक्ष है ये कामगारों के लिए स्वर्ग का निर्माण नहीं कर रहा.
You know, governments like to produce these sort of illusions of what is true.
तो आपको पता है कि सरकार एक प्रकार का सच क्या है इसका आभास निर्माण करती
है. Well, you remember here, don't you? India is shining.
तो यहाँ आपको भी याद होगा कि भारत जो है वो चमक रहा है.
Well, fortunately, India is a democracy and people just laughed.
और आपको मालूम है कि भारत में प्रजातंत्र है और लोग इस पे हंसते हैं.
But truth is a really powerful tool.
लेकिन सच जो है सही में एक ताकतवर हथियार है.
It can change society.
इसमें ये समाज को बदल सकता है.
You know, when Dr. Ambedkar said, there is no such thing as caste.
आपको याद होगा जब बाबा साहब ने कहा था कि ऐसी जाति ऐसी कोई चीज नहीं है.
It's just an idea.
ये सिर्फ एक कल्पना है.
It has no reality.
और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है.
Once he began to say that, other people began to say that, and it began to change.
एक बार उन्होंने कहना शुरू किया, बाकी लोगों ने भी फिर कहना शुरू किया और ये चीजें बदलने लगी.
Others say the same thing.
अब दूसरे भी ऐसा कहते हैं.
When we really speak the truth, then things change.
और जब हम सही मायने में सच बोलते हैं तो चीजें बदलती हैं.
And it's the same for us.
और ये हमारे लिए भी लागू होता है.
When we really face the fact that we're not living up to our ideals.
और जब हम सही में इस वास्तविकता का सामना करते हैं कि हम अपने आदर्शों के अनुसार नहीं जी रहे हैं.
Then things begin to change.
तब चीजें बदलने लगती हैं.
If we really face up to the fact that we're not satisfied with our lives as they are. They can begin to change.
तो जब हम सही मायने में ये स्वीकार करते हैं कि हम हमारे जीवन में जैसा है वैसे उसमें संतुष्ट नहीं है, तब चीजें बदलने लगती हैं.
The worst lie we can tell is the lie to ourselves.
और सबसे बुरा झूठ जो है वो हम बोल सकते वो है खुद को बोला गया झूठ
and the greatest truth we can tell is in the first place to ourselves
और सबसे पहला जो सच है अच्छा वो भी हम खुद के साथ ही बोल सकते
so the telling the truth means facing up to the reality of your own life
तो सच बोलना मतलब अपने जीवन की जो सच्चाई है उसका सामना करना
when you face up to that reality Things can change.
और जब आप उस सच्चाई का सामना करते हो तो चीजें बदलती हैं।
I had a friend once who told me that when he was at university, he created a completely false identity for himself.
तो मेरा एक दोस्त है जिन्होंने मुझे ये कहा कि जब वो विद्यालय में पढ़ते थे तो उन्होंने खुद की एक पूरी झूठी ऐसी पहचान बनाई
He came from quite a poor rural family, a peasant family, you could
तो
say.
तो बहुत ही गरीब ऐसे किसान घर से वो आया था
But he pretended he came from an aristocratic family.
लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वो किसी राजघराने से हैं
And you know, he spoke with that special accent that aristocrats have in England.
और इंग्लैंड का जो राजघराना है उसमें एक खास तरीके का उनका जो बोलचाल का तरीका होता है वैसे वो बात करते
थे And he said that just one day he realized what he was doing.
और एक दिन वो कहते हैं कि उन्हें पता चला कि वो क्या कर रहे हैं
He was trying to make himself popular. He was trying to get in with the right crowd of people.
तो उन्हें लगा कि वो अपने आप को प्रसिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और सही लोगों के समूहों में अपना स्थान बनाना चाहते
हैं So he just decided he was going to tell the truth.
और फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मैं सच बोलना चाहता
हूँ। Of course, people were very shocked. Some people were very angry with him.
और लोगों को अचानक फिर धक्का लगा। कुछ लोगों को तो उनपे गुस्सा भी आया।
But he said he felt a tremendous relief.
लेकिन फिर उन्होंने खुद को लगा कि उन्हें खुद को बहुत शांत लग रहा।
Well, that's quite a big, an extreme example.
अब ये बहुत ही एक दूसरे छोर का उदाहरण हो गया।
But perhaps we can think in our own lives of smaller examples
lekin aise chote chote hamare jeevan ke jo udaharan hai uske bare mein hum soch sakte hain
I think the most important thing is to face up to the reality of our own life
to mujhe lagta hai sabse mahatvapurna ek cheez ye hai ki hamare jeevan ki sachchai kya hai uska samna karna
are we living according to the ideals and values that we know to be the correct ones
to kya sahi mein wo adarsh aur mulya jinko hum sahi mante hain वैसे ही हम अपना जीवन जी रहे हैं
Being honest with ourselves in that respect.
क्या हम खुद के साथ उतने प्रामाणिक हैं
Then all other honesty follows from that.
और फिर बाकी की जो सच्चाई या प्रामाणिकता है उसमें से निकल कर आएगी
The final precept is sura merya maja pamadatana viramanisikapadam samadhiyami
और अंतिम जो शील है वो है सुरा मेरय
She obviously knows the precepts better than me. Which means refraining from technically distilled and fermented liquors.
तो जो भी नशा लाने वाले पदार्थ हैं उससे अपने आप को दूर रखना
There's a lot of debate amongst modern Buddhists about what that means
तो आधुनिक बौद्ध में इसका अर्थ क्या होता है इसको लेके काफी चर्चा होती है
in india it's generally interpreted as no alcohol at all
तो भारत में ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार की शराब से दूर रहना
in the west some people will occasionally have one little glass of wine
और पाश्चिमात्य देशों में लोग जो है वाइन का एक छोटा सा ग्लास पी लेते हैं
In other words, it's not seen in terms of getting drunk.
क्योंकि उसको इस तरीके से नहीं देखा जाता कि इससे नशा आ जाता है
Personally, I avoid drink.
व्यक्तिगत तौर पे मैं इस प्रकार का सेवन नहीं करता
As much as anything, I avoid it because I've seen the destructive power of drink.
और किसी भी अन्य चीज की तरह मैं इसको दूर रखता हूँ क्योंकि इसमें जो विध्वंसक इसकी जो शक्ति है उसको मैंने देखा है
I visit twice a year a gypsy communities in Hungary
तो हंगरी में जिप्सी समुदाय को मैं साल में दो बार भेंट देता हूँ
you know that these are people of Indian origin who went to Europe about 1,000 years ago
तो आप शायद जानते होंगे कि ये भारतीय मूल के लोग हैं जो लगभग 1,000 वर्ष पहले यूरोप चले गए
and they're very badly treated especially in central Europe
और मध्य यूरोप में उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है
you could say that Europe's Dalits.
तो आप कह सकते हो कि वो यूरोप के दलित लोग हैं
It's not so bad in England, but even there, I remember the attitudes towards gypsies when I was a child.
तो इंग्लैंड में इतनी बुरी परिस्थिति नहीं है, लेकिन बचपन में मुझे याद है कि लोगों का जिप्सियों को देखने का दृष्टिकोण कैसा था।
So they live outside the villages, outside the towns.
तो वो शहरों के बाहर रहते हैं, गांव के बाहर।
Terrible poverty, terrible unemployment.
और बहुत उनके अंदर गरीबी है, रोजगार नहीं है।
And they do what poor and excluded people usually do, they drink.
और गरीब और ऐसे निष्कासित किए हुए लोग जो आमतौर पे करते हैं वो भी करते हैं, वो शराब पीते हैं।
And consequently their troubles get worse.
और इससे उनकी तकलीफें और बढ़ जाती हैं।
So yes, I've seen, and here too, I've seen it in the slums here.
और मैंने देखा है, और यहाँ पे भी जो झुग्गी झोपड़ियाँ झोपड़ियाँ होती है वहाँ पे भी मैंने देखा है।
Somebody was telling me about tribals, well, around Chikaldara near Amaravati.
और कोई मुझे आदिवासी लोगों के बारे में बता रहा था, जैसे चिखलधरा के वहाँ बस्ती हैं।
Since you know, modernity has come, they've taken to drink.
और जैसे ही आधुनिकता का प्रवेश हुआ है, उन्होंने भी पीना शुरू कर दिया।
Because well, they find themselves in a worse position.
क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में जीते हैं।
So seeing that, I don't want to encourage that. I don't want to buy into that that whole world and industry.
तो ये सब जब मैं देखता हूँ तो मुझे उसमें समाविष्ट होना ऐसा नहीं लगता, या उस वैसी चीजें खरीदने का मेरा मन नहीं करता।
But the basic issue is keeping your mind clear, keeping alert and mindful.
तो लेकिन मूल बात यह है कि आपका मन जो है आपको सुस्पष्ट रखना है, जागरूक रखना है।
That's why we refrain from drink and drugs.
और इसीलिए हम शराब और किसी भी नशीली पदार्थों से दूर रहते हैं।
I've done my share of drinking in my time.
तो जब मेरा वक्त था, मुझे जितना पीना था मैं पी चुका हूँ।
It's pretty normal amongst university students in the West.
तो विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी हैं उनमें ये पीना बहुत आम बात होती है।
And from my own experience, I can assure you that you cannot remain mindful when you drink.
और मेरे खुद के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप पीते हो तब आप जागरूक नहीं रह सकते।
In fact, that's why you drink.
और इसीलिए तो आप पीते हो।
The pleasure of drinking is not being mindful.
मतलब पीने का आनंद यही होता है कि आपको कुछ याद नहीं रहता।
And yes, drugs too.
और नशीले पदार्थ भी।
Yes, I've done my share of drugs in the past.
और इस तरीके का नशा मैंने भी भूतकाल में किया है।
And again, you do it because they do put you into different states.
और आप ये इसलिए करते हो क्योंकि एक अलग स्तर आप उसमें अनुभव करते हो।
Very difficult to really be clear, mindful when you've ingested something like that.
और इस तरीके का कोई पदार्थ अगर आपके अंदर है तो जागरूक रहना, सुस्पष्ट रहना, ये बहुत ही मुश्किल होता है।
So the positive precept is स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ।
तो ये इसका सकारात्मक स्वरूप है, स्मृति सुस्पष्ट और प्रदीप रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता
हूँ। Just in case you didn't understand my Hindi. And yes, that's the positive precept, that you try to develop clear mindfulness.
तो सुस्पष्ट जागृति का निर्माण करने के लिए इस शील का आप आचरण करते हो।
And in this way, through these precepts, you're training yourself in skillful karma.
और इस तरीके से इन शीलों के द्वारा कुशल कर्मों की तरफ आप अपने आप को प्रशिक्षित करते हो।
That's why we take these precepts.
और इसीलिए हम इन शीलों को ग्रहण करते हैं।
You know, when you're a Buddhist and you meet people who are not Buddhist, they often ask you, "Are you allowed to do this? Are you allowed to do that?"
तो आपको पता होगा कि जैसे आप बौद्ध हो और दूसरे लोग जो बौद्ध नहीं है उनसे आप मिलते हो तो वो आपको प्रश्न पूछते हो, क्या आप ये कर सकते हो, क्या आपको ये करने की अनुमति है?
But it's not a question of being allowed to do something or not allowed to do something.
तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इसकी अनुमति है या इसकी अनुमति नहीं है।
You're training yourself in skillful action.
आप अपने आप को कुशल कर्म करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो।
You're training yourself in skillful action because you know that this will be beneficial to you, beneficial to others.
और आप अपने आप को कुशल कर्मों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो इसका आपको लाभ होगा और दूसरों को लाभ होगा।
It's not a question of being allowed at all.
और अनुमति मिलना या नहीं मिलना इसका ये बिल्कुल प्रश्न नहीं है।
And we know that this trains us in that way because of the law of karma.
और हमको ये इस तरीके का प्रशिक्षण मिलता है क्योंकि इसके पीछे कर्म का नियम है.
If we act skillfully, we will get a good outcome.
क्योंकि अगर हम कुशल कृति करते हैं तो कुशल ही उसका परिणाम होगा.
We'll experience our own minds emerging in a more satisfying, alert, happy way.
तो संतुष्ट, जागरूक और सुखी ऐसे मन की अवस्थाओं को हम अनुभव कर सकते हैं.
So, yes, this is how we work with developing skillful intention.
तो इसी प्रकार से कुशल उद्देश्य का निर्मित करने के लिए भी हम कार्य करते हैं.
And you will experience sooner or later from that effort a very definite result.
और जब आप इस तरीके का प्रयत्न करते हो तो अभी नहीं तो कुछ देर से आपको पता चलेगा कि इसके निश्चित ऐसे परिणाम हैं.
You'll experience your mind more bright, more happy.
आप देखोगे कि आपके मन जो है ज्यादा प्रकाशित है, ज्यादा सुखी है.
More easily, more naturally concentrated.
बहुत सहज है और स्वाभाविक तरीके से एकाग्र हो जाते हैं.
And becoming clearer and clearer.
और अधिक उसमें स्पष्टता आती जाती है.
It's very interesting. When the Buddha describes meditation, he makes quite a big point about preparation for meditation.
तो ये बहुत ही रोचक ऐसी बात है कि जब बुद्ध ध्यान के बारे में बात करते हैं तो ध्यान की जो पूर्व तैयारी होती है उसके बारे में भी वो बात करते हैं.
He says that if you want to meditate, you need to be acting skillfully.
वो कहते हैं कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको कुशल बर्ताव करना होता है.
Because when you are acting skillfully, you're happy.
क्योंकि जब आप कुशल आचरण करते हैं तो आप सुखी होते हो.
When you're happy, it's easy to concentrate your mind.
और जब आप सुखी होते हो तो बहुत ही सहजता से आपका मन एकाग्र होता है.
So you if you have difficulty with meditation, focus more on skillful action.
और अगर आपको ध्यान करने में तकलीफ हो रही है तो कुशल आचरण करने की ओर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए.
It's not a question of which technique you do.
तो किस पद्धति से आप ध्यान करते हैं इसका ये कोई प्रश्न नहीं है.
It's a question of the preparation that you've given.
तो ये बात ऐसी है कि आपने पूर्व तैयारी के लिए क्या किया है.
If you're in a happy, positive state of mind, meditation is easy.
तो अगर आप सुखी और सकारात्मक मनस्थिति है आपकी तो आपका ध्यान अच्छा होता है.
If you sit down to meditate, you've got nothing on your mind. Naturally, your mind becomes concentrated.
तो अगर आप ध्यान करने बैठे और आपके मन में कुछ नहीं चल रहा है, आप सुखी हो, तो आराम से आपका मन जो है एकाग्र हो जाता है.
So we need to do a lot of work just preparing our minds for meditation.
तो बहुत कार्य हमें करना पड़ता है अपने मन को ध्यान के लिए तैयार करने के लिए.
And then if we can be building a happier state of mind, meditation becomes very easy.
और इस तरह से अगर हम सुखी मनोवस्था का निर्माण करते हैं तो ध्यान बहुत सहज हो जाता है.
The effort to meditate helps you to develop a happy mind.
तो ध्यान करने के लिए जो आप प्रयास करते हो उससे भी आप एक आनंदी मन का निर्माण करते हो.
But in the end, the meditative states arise out of your basic happiness.
लेकिन अंत में आपके जो ध्यान की अवस्थाएं हैं उनका निर्माण भी आपके सुखी मनोस्थाओं से ही होता है.
It's quite interesting. The Buddha, sort of, that meditation is his natural state.
तो ये भी बहुत रोचक है कि बुद्ध के लिए ध्यान ये भी उनकी एक नैसर्गिक स्थिति थी.
He doesn't have to make an effort.
उसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता
था. When there's nothing to engage with, his mind naturally becomes concentrated.
तो बाहर अगर कोई स्थिति नहीं है तो उनका मन अपने आप ही ध्यान में चला जाता था.
It becomes very, very subtle.
और बहुत बहुत सूक्ष्म हो जाता था.
Becomes very, very pure.
और बहुत बहुत शुद्ध हो जाता था.
And without any effort, that's where he belongs, if you like.
और कोई भी प्रयास किए बिना ऐसा लगता था कि ये हमेशा वहीं रहते हैं.
We have to make an effort to get there.
लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता
And
है.
And a lot of our work is simply on basic skillful action.
और बहुत सारा हमारा जो कार्य रहता है ये जो मूल की कुशल कर्म है इस पे ही होता है.
So we'll say more about meditation tomorrow.
तो ध्यान के बारे में हम कल और अधिक बात करेंगे.
But we've been talking today really basically about Shila.
लेकिन आज जो है मूल तौर पे हम शीलों के बारे में बात कर रहे
हैं. Which is where this excellence, this hunt for excellence must begin.
और आपकी ये जो उत्कृष्टता की खोज है यहीं से शुरू होनी चाहिए.
If we want to develop excellence, we need to start by developing skillful action.
और अगर हम उत्कृष्टता निर्माण करना चाहते हैं तो हमें कुशल कर्म करके ही शुरुआत करनी पड़ेगी.
Developing in our minds skillful mental states.
और अपने मन में कुशल मनोवस्थाएं निर्माण करके.
And doing that especially by practicing the precepts.
और ऐसा करने के लिए खास तौर पे हम शीलों का आचरण करेंगे.
Looking at our actions to see to what extent they conform to the precepts.
और हमारी कृतियों की तरफ देखना है कि किस हद तक ये हमारे शीलों के साथ हैं.
So I hope that you've got some food for thought.
तो मुझे लगता है कि आपको चिंतन करने के लिए कुछ खाद्य मिल गया है.
And some food for reflection.
और चिंतन करने के लिए कुछ सामग्री है.
I imagine that during the course of the day I've said so much that there must be something that's hit you.
तो मुझे लगता है कि सारे दिन में मैंने बहुत कुछ बातें कही. कुछ तो ऐसा होगा जो आपको छू गया होगा.
And I'd like to suggest that when we're finished, you just take a few moments to reflect on what you've got from the day.
तो मैं चाहूँगा कि जब हम सत्र समाप्त करेंगे, तो आप कुछ समय ले अपने लिए और आपने क्या पाया इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचे.
What of the Dhamma that you've heard really is useful to you now?
तो जो कुछ भी धम्मा आपने सुना उसमें से कौन सा इस वक्त आपके लिए उपयोगी है.
You can hear I'm a little embarrassed about talking so much all day.
तो आपने शायद ये सुना होगा कि पूरा दिन बात करके मैं थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा
हूं. Because actually we really need very little dhamma.
क्योंकि सही मायने में हमको बहुत थोड़े से ही धम्म की आवश्यकता होती है.
A little dhamma goes a very long way.
और थोड़ा सा ही धम्म हमारे साथ बहुत दूर तक आता है.
We need homeopathic quantities of dhamma.
तो होम्योपैथी में जैसे दवाई दी जाती है वैसे ही हमें धम्म चाहिए होता है.
Just a little bit of dhamma, really understood and really applied, would take us a very long way indeed.
तो छोटी सी ही मात्रा में धम्म जिसे सही में समझा जाता है और उपयोग में लिया जाता है वो बहुत दूर तक हमारे साथ आता है.
I've given you a whole pharmacy today.
तो मैंने तो आपको पूरी दवाई की दुकान ही दे दी आज.
So see if there's something there that is useful to you.
तो देखिए कि उसमें ऐसा कुछ है क्या जो आप उपयोग में ला सकते हैं.
We've looked quite deeply at the basis of Dhamma.
तो धम्म का जो मूल है उसमें हमने बहुत गहराई से देखा.
What are you going to take away and use?
तो उसमें से आप क्या लेकर जाएंगे और उसका उपयोग करेंगे.
How will you use it?
और किस तरीके से आप उसका उपयोग करेंगे.
This sort of reflection is very, very important.
और इस तरीके का चिंतन जो है वो भी बहुत आवश्यक होता है.
Really, what I've said today, if we, because it includes me, if we really took it seriously, we would be moving towards enlightenment.
तो जैसे आज मैंने बहुत बातें की और मैं हम कह रहा हूँ कि अगर हम सही में उसको गंभीरता से लेंगे तो हम शायद बुद्धत्व की और भी जा सकते हैं.
So anyway, you see what is useful to you.
तो आप देखिए कि आपके लिए क्या उपयोगी है.
And in case you didn't get anything, I'll speak all day tomorrow as well.
और अगर आपको कुछ भी उसमें से नहीं मिला तो मैं कल वापस दिन भर बात करूंगा.
अभी क्या